أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد. ہماری گفتگو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے اور ہم امام صادق علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر رہے تھے. یہ مطلب بیان ہوا تھا کہ آئمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر اور سیرت کے اندر جو اختلاف ملتا ہے وہ اختلاف کیوں ہے, اور جواب یہ دیا تھا چونکہ آئمہ علیہ السلام جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے تھے اس معاشرے کی اقتضاءات, شرائط, حالات بدل جاتے تھے. تو آئمہ علیہ السلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے معاشرے کے مطابق زندگی گزاریں. صدر اسلام کے اندر چونکہ تنگ دستی تھی, لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی, تو ظاہری زندگی پیغمبر نے بھی اور امام علی علیہ السلام نے بھی انتہائی کم ترین رکھی. اس میں لباس اچھا نہ پہننا, اس میں کھانا اچھا نہ کھانا شامل تھا. لیکن بعض آئمہ جیسا کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کی زندگی تھی, ان کا اچھا رہن سہن تھا, اچھے لباس پہنتے تھے, اچھا کھانا کھاتے تھے. تو جواب یہ دیا کہ چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی صدر اسلام کی نسبت, لہٰذا حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ایک اچھا رہن سہن رکھیں. پھر چند مثالیں دی زہد کے اعتبار سے. زہد کا اصلاً مفہوم ہی غلط بیان کیا گیا ہے. زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کی طرف ہدف کی نگاہ سے نہ دیکھے بلکہ وسیلے کی نگاہ سے دیکھے. اگر انسان دنیا کو ہدف بنا لے تو اس کو کہتے ہیں دنیا دار. وہ دنیا کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے چونکہ اس کا ہدف دنیا حاصل کرنا ہے. لیکن اگر ایک انسان دنیا کو وسیلہ سمجھے اپنی آخرت کے لیے, وسیلہ سمجھے تقرب الہی کے لیے, وسیلہ سمجھے عبادت کے لیے, اگر وہ اپنا ہدف معنوی رکھے لیکن اس کے لیے وسیلہ اگر دنیا کو استعمال کرتا ہے, وسیلے کے طور پر اگر دنیا کو استعمال کرتا ہے تو اس کو دنیا دار نہیں کہتے. مثلاً ایک انسان اچھا کھانا کھاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اچھا کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ عبادت اچھی کر سکوں, تاکہ میں پڑھائی اچھی طریقے سے کر سکوں, تاکہ میں علمی میدان میں آگے بڑھ سکوں, تو یہ دنیا دار نہیں کہلائے گا. اور اسی طریقے سے مختلف مثالیں آپ لے لیتے ہیں. تو زہد کا جو غلط معنی کیا گیا, زاہد انسان اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ کرے, جو رہن سہن بھی برا رکھے, جو کپڑے بھی غلط پہنے, جو کھانا پانی ڈال کر کرے اور اچھا لذیذ کھانا نہ کھائے کسی بھی صورت میں, اس کو زاہد کہتے ہیں. یعنی اس قسم کے رہن سہن کو کلیت دیتے ہیں. یعنی ان بعض صوفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی تمام بشر کے لیے ہے الی یوم القیامہ. کون سی ظاہری زندگی؟ زندگی کے جو تبدیل ہونے والی ہے. میں اشارہ کروں گا کہ اس سیرت کے اندر چند چیزیں موجود ہیں جس کی طرف ہم نے توجہ کرنا ہوتی ہے. یہ جو سادہ زندگی اختیار کی تھی پیغمبر نے اور امام علی علیہ السلام نے, لباس کو اچھا نہ پہننا, کھانا اچھا نہ کھانا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ الی یوم القیامہ تمام بشر کے لیے ہے. حالانکہ ہم خود ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروکاروں کو منع کرتے ہیں کہ ہم جیسی زندگی, اس کی ظاہری یا رہن سہن اور اس قسم کی ہماری پیروی نہ کرو اس کے اندر, جیسا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں میں نے عرض بھی کیا. بس زہد کا غلط معنی یہ ہے کہ دنیا کی طرف بالکل توجہ نہ کرو. آپ کا ہدف فقط معنویت ہونی چاہیے. دنیا کسی بھی طریقے سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے, نہ وسیلے کی نیت سے, نہ کسی بھی نیت سے, دنیا کی طرف جانا ہی نہیں ہے. لیکن زہد کا جو اسلامی مفہوم ہے, جو درست مفہوم ہے, وہ یہی ہے کہ دنیا کو ہدف کی نگاہ سے نہیں دیکھنا بلکہ ہدف دنیا کو وسیلے کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ ہے زہد. और आइम्मा अलैहिस्सलाम जो अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे वो वसीले के तौर पर था, ना कि हदफ के तौर पर। एक नुक्ता मैं इशारा कर दूँ वो ये कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कुछ उसूल हैं जो हाकिम हैं और कुछ उनके मसादीक हैं। उसूल जो एक ज़िंदगी के ऊपर हाकिम होते हैं उनको कहा जाता है सीरत, और उसकी तर्ज जो होती है, जो रविश होती है उन उसूलों को इजरा करने के लिए, वो रविशें ज़िंदगी कहलाती हैं। और हमें जो कहा गया है वो सीरत की पैरवी करना है, और ज़िंदगी की पैरवी करना ये इल्ज़ामी नहीं है, बल्कि शराइत के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मैं से मिसाल देता हूँ उसको। एक असल के जो इस्लाम ने बयान किया है कि इसको इला यौमिल क़यामा ख्याल रखना है, और आइम्मा ने भी ख्याल रखा है, वो ये कि एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी को उमूमी ज़िंदगी से जुदा ना करे। मसलन अगर उमूमी ज़िंदगी में लोग जो हैं वो मुतवस्सित ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुतवस्सित ज़िंदगी के बराबर ज़िंदगी गुजारे। इस किस्म की ज़िंदगी करे कि मुतवस्सित तबका जो है वो मुश्किल में ना आए, उनकी जो रूहानी हालत है वो बुरी ना हो, साइकोलॉजी के एतबार से उनके अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। ज़िंदगी से ख्याल रखें उनका, अगर पैसे ज़्यादा आ भी जाते हैं, अगर इक्तिसादी एतबार से बहुत ज़्यादा हो भी जाते हैं, तो अपने उन ज़्यादा पैसों से इस तबके का ख्याल रखो। बस पहली असल जो मौजूद है जिसके ख्याल रखना है हमेशा हर मुसलमान ने, वो ये कि अपनी ज़िंदगी उमूमी ज़िंदगी से जुदा नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर कोई शख्स के पास पैसा ज़्यादा, महल बनाना शुरू कर दे, उस रहने वाले 3 बंदे हैं, कमरे 100 की तादाद में खड़े कर दे और मुजल्लल बनाना शुरू कर दे, तो आम इंसान जब उसके घर को देखेगा हसरत करेगा और बहुत सारी और मुश्किलात खड़ी होंगी। बस पहली असल ये है। दूसरी असल यह है कि इज्जत नफ्स का ख्याल रखे, ऐसी ज़िंदगी ना गुजारे कि जहाँ इज्जत नफ्स जो है वो इंसान की मजरूह हो जाए, बल्कि ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि इंसान की इज्जत नफ्स बाकी रहे। और इस किस्म के बाकी उसूल के मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं जाता। तो आप अगर इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन इसमें रविशें जो है वो जुदा हो जाती हैं। मसलन उमूमी ज़िंदगी से जुदा नहीं होना, अब उमूमी ज़िंदगी बाज़ औक़ात सदर इस्लाम जैसी है, उमूमी ज़िंदगी बाज़ औक़ात जो है वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की है, या मज़ीद उससे भी बेहतर सूरत में हो जाती है, तो हमने उससे जुदा नहीं होना, उसकी रविशें जो है वो बदल जाएंगी। तो अब हमने इस असल का ख्याल रखना है, इस असल की पैरवी करनी है, लेकिन रविशें जो हैं वो जुदा हो जाएंगी। अब कोई बंदा ये ना कहे आकर के इमाम अली अलैहिस्सलाम की रविश चूँकि ये थी बस मैंने उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, वला गैर ना, आपने इस असल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है और फिर देखना है कि आपके मुआशरे में क्या इक्तज़ात मौजूद हैं, उसके मुताबिक इज़्ज़त नफ्स आपकी बाकी रहे। अब इंसान इतना गंदा मुआशरे में रहने लग जाए और वो मुआशरे के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके हों और अच्छा लिबास पहनते हों, अच्छा खाना खाते हों, और ये बंदा जो है वो इंतहाई गंदगी के अंदर से आए, गंदा लिबास पहने, गंदा खाना खाए और इस तरीके से, तो इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी उसकी, मुसलमान की। तो लिहाजा हमें सीरत के अंदर पैरवी करनी है, और सीरत क्या है, इन उसूलों का नाम है कि जो इस्लाम ने बयान किए हैं। रविशें जो हैं वो बदल सकती हैं, रविशें हमने मुआशरे के मुताबिक जो है उसका लिहाज रखना है, उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। ये एक मतलब था कि जो बयान किया कि आइम्मा की सीरत मुख्तलिफ क्यों हुई, उसमें ज़ोहद की मिसाल दी आपको। एक मिसाल जो शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर देते हैं वो है सुलह और जंग के बारे में। जैसा कि मैंने सवाल भी पेश किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो इंतहाई तादाद में कम थे, फिर भी जिहाद किया, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी उमैया का दौर ख़त्म होने लगा और बनी अब्बास उनको गिराने के लिए आगे बढ़े, वो ज़मीना फराहम हुआ था सियासी एतबार से और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उस ज़मीने से इस्तेफादा नहीं किया और जिहाद नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि क्यों वहाँ जिहाद किया और यहाँ जिहाद नहीं किया? तो उसका जवाब भी यही है कि आप सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के को तहलील करें। किस अंदाज़ में? कि उसके शराइत, उसके हालात, उसके ज़वाबित, इन सब को मद्देनज़र रखें और इसी तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने को तहलील करें, फिर एक नतीजा लें। आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगी क्यों ये इख्तलाफ पाया जाता है, क्यों वहाँ जिहाद है और क्यों यहाँ जिहाद नहीं है। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को तहलील करते हैं तो वहाँ हमें ये मिलता है कि बनू उमैया सरे आम शरीयत को पामाल कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिना को रवाज दे रहे हैं, इक्तिसादी हवाले से हालात बद से बदतर कर रहे हैं, बैतुल माल को गारत कर रहे हैं, हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाकर पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ तोहीने शरीयत की जा रही हैं, तदय्युन का मसखरा उड़ाया जा रहा है, दीन के अहकामात को पांव तले रौंदा जा रहा है। तो जब शरीयत के जिसको खुदा ने हिदायत इंसान के लिए भेजा कयामत तक के लिए, वो शरीयत ही मस्ख होना शुरू हो गई है, अब वहां पर कोई आकिल इंसान हो नहीं होगा कि जो खामोश बैठेगा, बल्कि आकिल इंसान इस शरीयत को मस्ख होने से रोकेगा। जब इमाम ने देखा कि हालात इंतहाई बदतर हो चुके हैं और इसको हम नहीं रोक सकते मगर यह कि कयाम किया जाए, तो इमाम ने कयाम किया। इल्मी एतबार से अगर मसलन कोई बहसें शुरू कर देते, मुनाजरे शुरू कर दे, माहौल नहीं था उस वक्त, इल्मी एतबार से पस्त थे लोग, अभी इल्मी जो है माहौल नहीं बन पाया था इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यह तशखीस दिया और अपने खुतबों में फरमाया भी कि मैं अम्र बिल मारूफ व नहय अनिल मुनकर करने के लिए कयाम कर रहा हूं, अगर मैं कयाम ना करूं तो इस शरीयत को मस्ख करके रख देगा मुआविया का बेटा यजीद। तो लिहाजा इमाम ने कयाम किया और कोई जमीना ही फराहम नहीं था कि जिसके जरिए इमाम उसके अंदर इकदाम करते और इस शरीयत के मस्ख होने को रोक देते। जो पैगंबर के जमाने के सहाबी थे वो भी खामोश बैठे, डरे हुए बैठे हुए थे, इकदाम नहीं कर रहे थे। आम आवाम भी बनु उमैया के जुल्म की वजह से चुप करके बैठी हुई थी, कोई बोलने वाला नहीं था। तारीख का मुताला करें तो हमें यह चीजें नजर आती हैं। लिहाजा इमाम ने तशखीस दी कि मुझे कयाम करना है, तब जाकर यह रुकेगा, अगरचे मैं शहीदी क्यों ना हो जाऊं। मेरी शहादत के बाद लोग सवाल तो करेंगे कि क्यों शहीद हुआ, तो जब लोग बताएंगे कि क्यों जंग की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो बनी उमैया का चेहरा मस्ख हो जाएगा और शरीयत बच जाएगी, और इमाम ने ऐसा ही किया। लेकिन हम अगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तहलील करते हैं आकर, तो ये जो सवाल उठा है कि इमाम को बनी उमैया के दौर के खात्मे के अंदर और बनू अब्बास का हुकूमत के अंदर आने की हालत में ज़मीना फराम हुआ था, मैदान में आ जाते, बनू अब्बास की रहनुमाई करते और ख़ुद रहबरीत को संभाल लेते, क्यों नहीं किया? तो जब हम तारीख को तहलील करते हैं पता चलता है कि जिस तरीके से सवाल जहन में उठ रहा है हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि बनू अब्बास जो हैं उन्होंने जो कयाम किया था बनू उमैया के खिलाफ, उसमें गरज अपनी थी, ना इस्लाम की ना अहले बैत की, जैसा कि बाद में तहलील करके पेश किया जाएगा आपकी खिदमत में, और वहां से आप खुद वाज़ह और रोशन तौर पर देखेंगे कि हालात सियासी तौर पर आमादा नहीं थे अभी के इमाम अलैहिस्सलाम रहबरियत को संभालें, कि इंशाल्लाह इसको बाद में आपकी खिदमत में वजाहत करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।